नमस्कार। ऊर्जा में आप सभी दर्शकों का हार्दिक स्वागत है। अब तक हमने गुरुजी से जाना उन मंगलकारी बातों के बारे में जो गौतम बुद्ध ने गृहस्थ के लिए उपदेशित की है, मूर्खों की संगत से दूर रहना, पंडितों की संगत करना, और अब बारी है तीसरी बात जानने की, जो है पूजनीय की पूजा करना, सम्मान करना। पिछले एपिसोड में हमने दो और बातों के बारे में जाना, आचार्य और उपाध्याय। आज इसी विषय में कुछ और जानेंगे हमारे गुरुजी श्री गोयनका जी से।
सुखी हो बेटी।
प्रणाम माता जी। गुरुजी, पिछले एपिसोड में आपने हमें आचार्य और उपाध्याय, इन दो शब्दों की व्याख्या दी, लेकिन हमें गुरु शब्द की तो आदत ही हो चुकी है।
गुरु शब्द में कोई दोष नहीं है, शब्द अपने आप में क्या बुरा है। गुरु शब्द का अर्थ होता है गौरव हो, गरिमा हो, महानता हो, लेकिन कठिनाई ये हुई कि गौरव और गरिमा दूर रह गई। कुछ लोगों ने धर्म सिखाने के नाम पर व्यवसाय शुरू कर दिया। भगवान जानते थे कि इस तरह धर्म का ह्रास होता है, धर्म की ग्लानि होती है। अगर धर्म को व्यवसाय बना दिया जाए तो बहुत स्पष्ट शब्दों में उन्होंने कहा कि धम्मे न न वणिक चरे, धर्म को कभी वाणिज्य मत बना लेना, व्यवसाय मत बना लेना, उसे आमदनी का रास्ता न बना देना, कमर्शियल कम्युनिटी मत बना देना। जब ये होने लगता है तो ऐसा व्यक्ति अपने को गुरु कहलाने वाला, उसका लक्ष्य केवल ये है कि कैसे मुझे अधिक से अधिक पैसे मिले। आखिर मैं लोगों को सिखाता हूँ तो मुझे कुछ मिलना चाहिए, और वो मेरी इच्छा के मुताबिक अधिक से अधिक मिलना चाहिए। तो ये गुरु शब्द जो गरिमा थी वो दूर होने लगी। नहीं तो गुरु शब्द में कोई दोष की बात नहीं है, इसलिए भगवान ने गुरु शब्द का प्रयोग नहीं किया। कल्याण मित्र कहा, आचार्य कहा, उपाध्याय कहा। तो आज भी अगर लोग इस बात को ठीक से समझें तो कोई गलत रास्ते जाने वाला व्यक्ति, लोग उसको प्रोत्साहन न दें तो अपने आप सुधार होना शुरू हो जाएगा। अन्यथा लोग भी ना समझी से कि न जाने क्या प्राप्त हो जाएगा, क्या चमत्कार होगा। तो इस मारे जो व्यवसाय करने वाले हैं, जिनको केवल यश चाहिए, प्रतिष्ठा चाहिए, मान चाहिए, सम्मान चाहिए, इसलिए सारा कुछ कर रहे हैं, उन्होंने धर्म की गरिमा भी नीची कर दी, धर्म का गौरव नीचा कर दिया, गुरु शब्द का गौरव नीचा कर दिया। तो बचना चाहिए इससे।
शुक्रिया गुरु जी, आपने बहुत ही अच्छी तरह से समझाया कि जो धर्म गुरु होता है वो पूजनीय होता है, और उसको भी ये ख्याल रखना चाहिए कि वो पूजनीय बना रहे। तो गुरुजी, क्या यही बात भिक्षुओं के लिए और सन्यासियों के लिए लागू होती है?
बिल्कुल लागू होती है बेटी। आखिर कोई भिक्षु क्यों बनता है, सन्यासी क्यों बनता है, घर बार क्यों छोड़ता है? पहली बात तो ये कि अपने आप को धर्म में पकाता है। खुद ही नहीं पकेगा तो औरों को क्या सिखाएगा? लेकिन केवल अपने को पका के नहीं रह जाएगा, फिर वो औरों को सिखाएगा, औरों की सेवा करेगा, वो भी धर्मगुरु है। अपने देश में न जाने कितने सदगुरु हुए और आज भी हैं ही। ऐसे ही कोई भिक्षु हो, सन्यासी हो, सब कुछ त्यागा हुआ है, केवल लोक कल्याण के लिए, लोक कल्याण के लिए धर्म सिखा रहा है। बड़ा गौरव है उसका, बड़ी गरिमा है उसकी। लेकिन वो भी अगर व्यवसाय बना ले तो गौरव नहीं, गरिमा नहीं। भिक्षु का और सन्यासी का अर्थ यही है कि वो धन संग्रह नहीं करता। एक गृहस्थ कंगाल हो तो बुरी बात है, इसी तरह से एक गृह त्यागी धनवान हो तो बुरी बात है। उसकी अपनी रिक्वायरमेंट्स जो है, उसके शिष्य लोग आप ही देखेंगे, समाज देखेगा। इसने घर त्यागा हुआ है तो इसका भरण पोषण कौन करे? इसके पास कोई आजीविका नहीं है, और भरण पोषण भी इतना मामूली, एक वक्त का भोजन मिल गया तो बहुत है, दो जोड़े चीवर हैं तो बहुत है, सिर छिपाने के लिए कोई जगह मिली तो मिली, नहीं तो पेड़ के नीचे सो जाएंगे। तो इस तरह से जो त्याग तपस्या के साथ जो भिक्षु हैं, सन्यासी हैं, पूज्य हैं। लेकिन जो लोग ऐसा नहीं हैं, उन्होंने इस गौरवमय अवस्था को नीचे गिरा दिया, उससे बचना चाहिए। बेटे, जो भिक्षु है, जो सन्यासी है, उसकी अपनी गरिमा इस बात में है कि वो भिखारी नहीं है, भिक्षु है, भिक्षुक नहीं है, सन्यासी है। कभी मांगेगा नहीं, घर के सामने गया, एक मिनट दो मिनट खड़ा रहेगा, भिक्षा मिल गई तेरा मंगल हो, नहीं मिली तेरा मंगल हो। गोचरी करेगा, यह भी नहीं कि सारा भोजन एक ही जगह से मिल जाए। गाय जब चरने जाती है, थोड़ा सा यहां खाएगी, फिर आगे चलेगी, थोड़ा सा यहां खाएगी, थोड़ा सा यहां खाएगी, अपना सारा भोजन एक ही स्थान पर नहीं करेगी, गोचरी है। तो इसी तरह से किसी गृहस्थ को यह भार न लगे कि इसके पूरे भोजन का भार मेरे सिर पर है। तो सही माने वही भिक्षु है, वही सन्यासी है, जो किसी पर भार नहीं बनता। उसकी इसी बात में गौरव है, इसी बात में गरिमा है कि वो मधुकरी करेगा, गोचरी करेगा, थोड़ा यहां, थोड़ा यहां, थोड़ा यहां, बस।
जी गुरुजी, आपने कहा कि साधु सन्यासी गृहस्थ के लिए हमेशा पूजनीय होते हैं। कार्यक्रम को हम आगे बढ़ाएंगे, लेकिन एक छोटे से ब्रेक के बाद। देखते रहिए। एक बार फिर हार्दिक स्वागत है आप सभी दर्शकों का आपके अपने प्रोग्राम ऊर्जा में। गुरुजी, आपका जन्म बर्मा में हुआ, वहाँ सन्यासियों की तो बहुत अच्छी परंपरा है, आपका क्या अनुभव रहा है?
भारत की प्राचीन परंपरा है बेटी, जिसको वो निभा रहे हैं, जो भारत का गौरव है। वहां पर जो भिक्षु हैं, जो 2500 वर्ष पुराने या उससे पुराने जो परंपरा चली आ रही है उसका पालन करते हैं, कभी मांगेंगे नहीं, मांगने के लिए नहीं जा रहे। गृहस्थ को ये मौका देते हैं कि वो दान दे करके पुण्य अर्जित करे, तो किसी घर के सामने खड़े हुए नहीं कहेंगे भिक्षांग दे, नहीं कहेंगे माई रोटी दो, तेरा बेटा जिए, तेरे घर में लक्ष्मी का, कोई एक शब्द नहीं निकालेंगे। देखते हैं सुबह सुबह प्रातःकाल लाइन से चले आ रहे हैं, सिर नीचा है, आंख नीची है, नपे तुले कदमों से चले जा रहे हैं। किसी का घर आया तो रुक गए एक मिनट दो मिनट, घर का मालिक या मालकिन आकर के उसने कुछ दी भिक्षा, बहुत अच्छी बात, तेरा मंगल हो, नहीं दी तेरा मंगल हो, और आगे चल पड़े। अगर अकेला है तो भिक्षु देखेगा इतनी मिल गई भिक्षा, पर्याप्त है मेरे लिए। भगवान की वाणी के अनुसार भत्त मतन्यु, यानी कितना भात मुझे चाहिए, कितना भोजन चाहिए, उसकी मात्रा जानता है, उससे अधिक नहीं लेगा, उतना मिल गया कहीं बैठ के अपना आहार कर लेगा। कभी कभी मान लो कि विहार में कोई बूढ़ा भिक्षु है, वो भिक्षाटन लिए नहीं निकल सका, कोई बीमार है, तो जो मिलेगा अपने लिए थोड़ा और बाकी वहां पर बांटने के लिए, इकट्ठा नहीं करेंगे कभी भी। तो ये गौरव है, ये भारत की पुरातन परंपरा का गौरव है कि मांगेगा नहीं। अगर मांगता है तो भिक्षुक हो गया, मांगता है तो भिखारी हो गया, भिखारी नहीं है, उसका गौरव है अपना। आब गया, आदर गया, और नैनन गया स्नेह, ये तीनों तब ही गए जब ही कहा कछु दे। जैसे ही मांगना शुरू किया कि तीनों गए, ना कोई आब है, ना रुआब है, ना कोई स्नेह है, सब खत्म हो जाते हैं। एक भिक्षु, एक सन्यासी, एक गृह त्यागी अपने सम्मान को, अपने गौरव को, अपनी गरिमा को गिरने नहीं देगा, वो धर्म का जो महिमा है उसे उठाए रखे।
जी गुरु जी, गुरु जी 2500 वर्ष पहले भगवान जी ने जो बात कही थी वो आज भी कितनी प्रासंगिक है?
बिल्कुल बेटी, धर्म तो हमेशा प्रासंगिक है। आज के लाखों करोड़ों वर्ष भी धर्म जितना प्रासंगिक था आज भी उतना ही है, और लाखों करोड़ों वर्ष के बाद भी वैसा ही रहेगा। धर्म धर्म हो तो, और धर्म यदि संप्रदाय बन जाता है, उसका सार तो छूट जाता है और बाहर के छिलके रह जाते हैं, तो बेटे तब भी हानिकारक, आज भी हानिकारक, भविष्य में भी हानिकारक। तो ये जो धर्म के आचार्य हैं, उनको समझना चाहिए कि हम धर्म का सार छूटने न दें। धर्म का साथ सार रहेगा तो अपने आप आपस में सौमनस्यता रहेगी, प्यार रहेगा, मोहब्बत रहेगी, और किसी तरह का विग्रह विवाद नहीं होगा, झगड़ा फसाद नहीं होगा।
गुरुजी, अगर देवी देवताओं का पूजन दूषित चित्त से किया जाए तो वो हमारे लिए कल्याणकारी कैसे हो सकता है?
कभी नहीं हो सकता बेटी। हमने अपना चित्त ही नहीं सुधारा और हम पूजा कर रहे हैं किसी देवी की, किसी देवता की, उसको खुश करने के लिए। कैसे खुश होंगे? वो जानती है ना हमारे चित्त की क्या अवस्था है। संत कहता है कि मुंह से जप मत कर से जप, हाथ से मत जाप कर, मुंह से मत जाप कर, मन से जप मत राम, राम को मन से मत जपो। अरे राम जब ही तुझको जपे तब पावो विश्राम। जिस दिन राम तुम्हें जपने लगेगा, कब जपने लगेगा? हमारे में वो गुण आएंगे तब ना। मन ऐसा निर्मल भया जैसे गंगा नीर, पीछे पीछे हरि चले कहत कबीर कबीर। वो पीछे लग जाएंगे, होना चाहिए ना, अपने में गुण आना चाहिए ना। तो देवी देवता को खुश करने का एक ही तरीका कि हम धर्म में पके हैं।
जी गुरुजी, बहुत ही अच्छा समझाया आपने कि जब तक हम अपने आप को नहीं सुधारेंगे देवी देवताओं की कृपा हम पर नहीं होगी। आपसे बातचीत जारी रहेगी लेकिन इस वक्त हमें लेना होगा एक ब्रेक। एक बार फिर स्वागत है आप सभी दर्शकों का ऊर्जा में। गुरुजी, आपने अभी कहा कि सही चित्त से पूजा की जाए तो वो स्वयं पूजनीय बन जाता है।
बिल्कुल।
तो कैसे उदाहरण है हमारे सामने?
बहुत उदाहरण है बेटी। सबसे बड़ा उदाहरण तो सम्यक संबुद्ध का है। राजकुमार सिद्धार्थ गौतम घर छोड़ करके बाहर तपस्या करते करते, साधना करते करते उस अवस्था पर पहुंचा कि सम्यक संबुद्ध हो गया। तो देवलोक के देवता आकर के उसको नमस्कार करने लगे, ब्रह्मलोक के ब्रह्मा आकर उसको नमस्कार करने लगे। केवल उसकी बात नहीं है, जिन जिन लोगों को धर्म सिखा करके उस अवस्था पर पहुंचाया, वो किसी जाति का हो किसी वर्ण का हो कोई नहीं पूछता, धर्म सिखाया, धर्म में ऊंचा हो गया। सुनीत नाम का एक व्यक्ति जो भंगी का काम करने वाला, भगवान के संपर्क में आया, उन्होंने सिखाना शुरू किया उसे, सिखाते 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 अरंत बन गया, मुक्त हो गया। तो जिनके दिव्य दृष्टि थी वो देखते हैं कि देवता आते हैं उसको नमस्कार करते हैं, ब्रह्मा आते हैं उसको नमस्कार करते हैं, जो पूजनीय है उसको सब पूजेंगे और देवी देवता ईश्वर ब्रह्म तो और पूजेंगे, क्योंकि वो इस मार्ग को प्रोत्साहन दिया चाहते हैं तो पूजेंगे ही। उन दिनों की बात नहीं, आज भी जो लोग अछूत कहे जाते हैं, अस्पृश्य कहे जाते हैं, धर्म के रास्ते आगे बढ़ रहे हैं। हम देखते हैं आगे बढ़ रहे हैं और लोग सम्मान कर रहे हैं उनका, धर्म की गद्दी पर बैठे हैं और लोग उनको नमस्कार करते हैं। किस जाति का है किस वर्ण का कोई नहीं पूछता। तो सम्मान धर्म का होता है, धर्म जीवन में जागे तो आदरणीय हो जाएगा, पूजनीय हो जाएगा, अपने आप हो जाएगा। लोग भी खूब पूजा च पूजनीय आनंग, जो पूजनीय है उसकी पूजा करेंगे ही, निश्चित रूप से करेंगे।
गुरुजी, हम जानना चाहेंगे कि किसी का वंदन कैसे करें?
बेटी, वंदन दो प्रकार के होते हैं। एक तो लोकीय, जैसे संसार में लोग सिर झुकाते हैं, नमस्कार करते हैं, पूजा करते हैं, तो फूल चढ़ाते हैं, दीप जलाते हैं, धूप जलाते हैं, उसका भी अपना लाभ है, क्योंकि वो करते हुए मन में श्रद्धा जागती है, मन थोड़ा समता में आता है, कुछ तो लाभ होता है, सही लाभ नहीं होता। तो जो धर्म गुरु होगा, सही धर्म गुरु होगा, सतगुरु होगा, वो देखेगा कि हमारे शिष्य में धर्म जाग रहा है कि नहीं, वो धर्म में कितना पक रहा है, ये प्रमुख बात होगी, और किसी बात को नहीं देखेगा। जात पात पूछे ना कोई, धर्म जगे सो धार्मिक होए, धर्म जगे सो पूजनीय होए। धर्म कैसे जागा, जागा कि नहीं जागा? मुझे याद है हमारे गुरुदेव जब जाते थे वहां पर तो हाथ जोड़ करके झुक कर नमस्कार करते थे, तो कभी कभी पूछते थे कैसे नमस्कार किया रे? मैकेनिकल नमस्कार किया कि धार्मिक नमस्कार किया? मैकेनिकल नमस्कार किया। मैकेनिकल नमस्कार होता है केवल झुका देने से, और धर्म में पकता है तो अपने भीतर क्या हो रहा है उसको देखते हुए। साधना करते करते साधक की यह अवस्था आती है कि शरीर का सारा ठोसपना समाप्त हो जाता है, जो मृणमय शरीर है, मट्टी जैसा लोथ जैसा, चिन्मय हो जाता है, एक एक अणु चैतन्य है। उस एक एक अणु की चैतन्य अवस्था को जानते हुए, चाहे सिर पर जाने, चाहे नासिका पर जाने, चाहे हृदय पर जाने, चाहे सारे शरीर में जाने, ऐसे जानते हुए जब नमस्कार करता है तो धर्म का नमस्कार होता है। तो पूछते थे कैसे नमस्कार किया रे, धर्म से नमस्कार किया कि यंत्रवत किया, मैकेनिकल किया? सारा आदमी चौंकता था कि तो पूछेंगे तुमको वो सजग होकर नमस्कार करना है। एक बार हमारे मन में आया कि जब गुरु जी हमें आशीर्वाद देते हैं, तेरा भला हो, तेरा मंगल हो, तो वो तो यंत्रवत नहीं देते होंगे, वो भी ऐसे ही देते होंगे, धर्म के साथ देते होंगे। हमारे तो मन में प्रश्न आया, संयोग की बात उनके मन में जागा कि ऐसा प्रश्न भी हो सकता है। तो कहते हैं देख, तुम लोगों को कहता हूं कि धर्मवत नमस्कार करो, वैसे मैं भी जब मंगल कामना करता हूं, तुम्हें आशीष देता हूं, तो पहले सारे शरीर का चैतन्य जगा करके और तब देता हूं, तो वो मंगल कामना, वो मंगल मैत्री कितनी बलवान होती है, कितनी फलदायी होती है, हम लोग जानते हैं जो उनके संपर्क में रहे। तो दोनों ही ओर से यंत्रवत बात ना हो, केवल दिखावा नहीं हो, भीतर से धर्म जागे, धर्म जागते हुए नमस्कार करें, धर्म जागते हुए मंगल कामना करें। ये धर्म का लक्षण है जो सब में आना चाहिए, गुरु में भी आना चाहिए, शिष्य में भी आना चाहिए।
शुक्रिया गुरुजी, आपने हमें समझाया कि गुरुजनों की पूजा कैसी करनी चाहिए। गुरुजी, भगवान बुद्ध ने भी चैत्यों का निर्माण किया था जहाँ पूजा की जाती है, और आपकी प्रेरणा से हमारी इस मुंबई नगरी में भी एक विशाल चैत्य का निर्माण होने वाला है, वहाँ पूजा कैसी होगी?
धर्ममय होगी बेटी। भगवान बुद्ध को भी कोई नमस्कार करता है, पूजा करता है, तो वो समझाते हैं कैसी पूजा होनी चाहिए। भीतर से धर्म जाग रहा है और हम नमस्कार कर रहे हैं। और जो चैत्य बनते हैं, चैत्य शब्द का अर्थ यही है कि जहां पर चित्त को एकाग्र किया जा सके, जहां पर चित्त की चेतना को सुधारा जा सके, वो चैत्य है। और वो काम करे नहीं और मैकेनिकल पूजा कर ली तो ये कितना ही बड़ा पगोड़ा बना लो, किस काम की बात हुई। वो इसलिए होता है कि वहां जाने वाला व्यक्ति अपने मन को कैसे कंट्रोल करता है और कैसे भीतर की सच्चाई को जान रहा है और जानते जानते नमस्कार करता है। तो चैत्य का बनाना और चैत्य का उपयोग करना सही रूप में हो गया, कल्याणकारी हो गया। अन्यथा तो इस संप्रदाय का ये मंदिर, उस संप्रदाय का ये देवस्थान, उसका ये क्या बात हुई, उसे क्या मिला? हर देवस्थान, हर मंदिर, हर पूजा का स्थान इसलिए होता है कि मनुष्य अपनी चित्त की चेतना को सुधारे। तो चैत्य बने, बुद्ध के समय बने, बुद्ध के बाद बने, आज भी बन रहे हैं, तो इसीलिए बनने चाहिए कि वो सिर झुका करके मैकेनिकल पूजा ना हो जाए, चित्त की चेतना सुधरे।
शुक्रिया गुरुजी। गुरुजी, हमारे शो का अगला हिस्सा दर्शकों के प्रश्नों पर आधारित है, तो दर्शकों मिलते हैं एक छोटे से ब्रेक के बाद। स्वागत है आप सभी दर्शकों का ऊर्जा में। गुरुजी, पहला प्रश्न पूछ रहे हैं डॉक्टर जयंत शाह नंदुरबार से। वो पूछते हैं कि बच्चों की पढ़ाई में सबसे महत्वपूर्ण बात कौन सी है?
बच्चों की पढ़ाई में तीन बातें हैं और तीनों महत्वपूर्ण हैं। पहली तो सामान्य बात है कि लिखना पढ़ना आना चाहिए, सामान्य ज्ञान भी नहीं होगा तो जीवन में लोग हंसेंगे, इतनी पढ़ाई भी नहीं इसके पास, इतनी बात भी नहीं जानता। और दूसरी बात, केवल किताबी कीड़ा होकर ना रह जाए, गृहस्थ है, उसको अपनी जिम्मेदारी निभानी है, तो आजीविका के लिए कोई शिल्प सीखे, कोई भी किसी तरह का काम सीखे जिससे अपना आजीविका चला सके, वो उसके साथ जुड़ना जरूरी है। लेकिन ये केवल दो ही होके रह जाए तो भी कमी रह गई। तीसरी बड़ी बात और ज्यादा इंपॉर्टेंट बात वो ये है कि चरित्र निर्माण वो सीखे, बचपन से ही बच्चों को चरित्र निर्माण की शिक्षा देनी चाहिए ताकि बड़े होकर के बड़ी सुख शांति का जीवन जिए, अपने लिए भला, औरों के लिए भला, बस यही शिक्षा है।
जी गुरुजी। गुरुजी, अगला प्रश्न पूछ रहे हैं सुरेंद्र गोविंद जी सीतापुर से। वो कहते हैं कि मुझ में बहुत ही करुणा है, जब भी मैं किसी दुखियारे को देखता हूं तो मुझे रोना आ जाता है, तो मैं क्या करूं?
ये कैसे करुणा हुई? धर्म में रोने को स्थान नहीं है। तुम अपने आप को भीतर से सफाई करते करते ये रोने वाली बात निकाल दो। जब करुणा जागती है किसी को देख करके, तो ये होना चाहिए कि मैं इसकी कैसे मदद करूं, इसको इस कष्ट में से कैसे निकालूं, और सामर्थ्य नहीं है मान लो उसको निकालने की, तो कम से कम ये हो कि हम मंगल मैत्री, तेरा मंगल हो, तेरा कल्याण हो, ये मंगल कामना करें। रोने से क्या मिलेगा? उसको बोलो रोना छोड़ देवे, करुणा रखे, नहीं करुणा के प्रति आसक्ति हो जाएगी तो रोना आएगा।
गुरुजी, अगला प्रश्न पूछ रहे हैं भारत बांदेकर जी दुबई से। वो पूछते हैं कि अगर दुनिया में किसी व्यक्ति को हर मनचाही चीज मिल जाए तो क्या वो पूर्ण सुखी हो जाएगा?
अरे बेटी, किसको हर मनचाही चीज मिली है? मिलती ही नहीं, और मिल जाए तो कभी सुखी होता नहीं। कैसे सुखी होगा? एक चाह जागी, पहले तो पूरी होनी मुश्किल। पूरी हो गई कि बासी हो जाएगी, फिर दूसरी जागेगी, पूरी हो गई वो बासी हो गई, एक पर एक जागती चली जाएगी। ये तो ऐसी बाल्टी है जिसका पैंदा नहीं, बिना पैंदे की बाल्टी है, भरी नहीं जाएगी कभी। तो उस जंजाल में पड़ना ही नहीं कि मेरी सारी चाह पूरी हो जाए। अरे बाबा, निकलो इस चाह के बाहर। जो आवश्यक है वो मेहनत करोगे, अपने आप पूरी होगी। बाकी सारी चाह पूरी हो जाए, ये बात मन से निकाल दो।
गुरुजी, आपने हमारे सारे प्रैक्टिकल क्वेश्चंस के उत्तर कितनी अच्छी तरह से समझाए। आज का ये एपिसोड यहीं पर समाप्त होता है। प्रणाम गुरुजी।
सुखी हो बेटी।
प्रणाम माताजी। दर्शकों, ये था हमारा आज का एपिसोड। आप हमें अपने प्रश्न हमारे पते पर जरूर लिख भेजिए। हमारा पता है ऊर्जा जी नेटवर्क, पीओ बैग नंबर 1, अंधेरी ईस्ट, मुंबई 99, इंडिया TVC। आप हमें ईमेल भी कर सकते हैं response@znetwork.com। अगले हफ्ते इसी दिन इसी समय देखना ना भूलिए आपका अपना प्रोग्राम ऊर्जा। नमस्कार। नमस्कार दर्शकों, ऊर्जा में आप सभी का हार्दिक स्वागत है। हम उन बातों को जानने की कोशिश कर रहे हैं जो हमारे जीवन को सार्थक और श्रेष्ठ बना सकती हैं। पिछले एपिसोड में गुरुजी ने हमें उन प्रेरणादायी बातों के बारे में समझाया जो भगवान बुद्ध ने खास करके गृहस्थ के लिए बनाई है। तो आइए इसी धारा को आगे बढ़ाते हैं और उत्तम मंगल के बारे में कुछ और जानते हैं विपश्यना आचार्य श्री गोयनका जी से।
सुखी हो बेटी।
प्रणाम माता जी। गुरुजी, अब तक आपने हमें मंगल पथ के 3 प्रारंभिक कदम बताए।
ठीक।
इस पथ का अगला चरण कौन सा है?
अब इसके बाद गृहस्थ को यह देखना होता है कि मैं कहां रहूं। तो अगला कदम है पति रूप देश वासो जय। अनुकूल देश में रहना चाहिए, प्रतिकूल देश में नहीं। ये मंगल है, गृहस्थ के लिए आवश्यक मंगल है।
गुरुजी, ये प्रदेश अनुकूल है या नहीं ये हम कैसे जाने, और इसमें रहने के क्या लाभ हैं?
बेटी, सरल बात है। हम किसी ऐसे देश में जाके रहें जहां का वातावरण अनुकूल ना हो। कैसे अनुकूल ना हो? कि स्वास्थ्य के लिए अनुकूल ना हो, सरकार का प्रबंध ऐसा नहीं है कि वहां के वातावरण को स्वास्थ्य के अनुकूल बना के रखे। ऐसे जगह जाके रहें जहां हमारी कोई सुरक्षा नहीं है, शासन ने सुरक्षा के कोई उचित प्रबंध नहीं कर रखे। कोई आए लूट के ले जाए, कोई आए मार के चला जाए, तो कैसे हमारे अनुकूल होगा? इसके अतिरिक्त उस देश के लोग कैसे हैं? अगर उस देश के लोग झगड़ालू हैं, दंगे फसाद करने वाले हैं, गाली गलौज करने वाले हैं, मारपीट करने वाले हैं, हत्या करने वाले हैं, कैसे हमारे अनुकूल होगा? और फिर एक बात बड़ी महत्व की बात ये कि वहां का जो व्यवस्था है वहां की, उसमें रहते हुए हम अपना धर्म पालन करने में कोई कठिनाई तो नहीं महसूस करते? हमें शील सदाचार का जीवन जीना है, उसमें कोई अड़चन आती हो? हमको मन को अपने वश में करना है, उसे निर्मल करना है, कोई सुविधा ही ना हो? माने ऐसा स्थान हो जहां पर कम से कम ऐसी तपोभूमियां हैं कि शील सदाचार का पालन करते हुए हम मन को वश में करना भी सीखें, उसको निर्मल करना भी सीखें, तो बहुत उपयुक्त हुआ, वो स्थान हमारे लिए बहुत ठीक हुआ। लाभ सबसे बड़ा यही है बेटी कि जिस तरह से किसी दुर्जन व्यक्ति के साथ रहने से हमारी हानि होती है, कभी लाभ नहीं होता, सज्जन के साथ रहने से हमें लाभ होता है, वैसे ही प्रतिकूल जगह में रहने से हानि होगी, क्योंकि हमें सुख शांति नहीं मिलेगी, हम धर्म के रास्ते ठीक से चल नहीं सकेंगे, हमारी सुरक्षा का प्रबंध नहीं, हमारे स्वास्थ्य का प्रबंध नहीं, बच्चों की पढ़ाई लिखाई का ठीक प्रबंध नहीं, तो वहां रहकर कैसे हम सुखी होंगे। और अगर ये सारे प्रबंध हैं तो ऐसे स्थान पर जरूर रहना चाहिए। तो ऐसे ही जैसे कि सज्जन के साथ रहने में हमको लाभ होता है, दुर्जन के साथ रहने में हानि होती है, वैसे अच्छे स्थान पर, अनुकूल स्थान पर रहने में लाभ ही लाभ है और प्रतिकूल स्थान पर रहने में दोष ही दोष है।
जी गुरुजी। गुरुजी, हमारे आसपास के इलाके में अगर ऐसी कोई नई प्रवृत्ति शुरू हो रही हो जो वातावरण को दूषित कर रही हो, तो क्या हमें उसका विरोध करना चाहिए?
बहुत कड़ाई से विरोध करना चाहिए बेटी। कहीं भी वातावरण में प्रदूषण न होने दें, हमारे स्वास्थ्य का सवाल है, कड़ा विरोध होना चाहिए।
गुरुजी, क्या यही बात हमारे वर्क प्लेस में भी लागू होती है?
बिल्कुल लागू होती है बेटी। वर्क प्लेस में अगर वातावरण सारा दूषित है, इस तरह का वहां पर प्रदूषण फैला हुआ है, और उस पर कोई काम करता है, मजदूरी करता है, या कोई क्लर्क का काम करता है, या कोई ऑफिस में काम करता है, तो उसका स्वास्थ्य कैसे ठीक रहेगा? और जब स्वास्थ्य ठीक नहीं है तो कैसे जीवन भी धार्मिक कैसे जिएगा? व्याकुल रहेगा मन, बिल्कुल बचना चाहिए, उसका विरोध करना चाहिए।
और गुरुजी, जैसे आजकल बहुत सारी महिलाएं काम में जुटी रहती हैं, तो उन्हें अपने ऑफिस में किस बात का ध्यान रखना चाहिए?
बेटी, ये बड़ा महत्वपूर्ण प्रश्न है। पुराने समय से भारत में पुरुष प्रधान समाज रहा, तो आज महिलाएं जब बाहर जाके काम करने लगी, तो सब तो नहीं लेकिन अनेक पुरुषों का एक ऐसी मनोवृत्ति बना ली उन्होंने कि वे शोषण करना चाहेंगे, तो कोई पुरुष प्रधान की प्रवृत्ति लेकर के महिलाओं पर किसी तरह का शोषण करे, उनको कष्ट पहुंचाए, तो कड़ा विरोध करना चाहिए। धर्म के मामले में कायरता नहीं आए कि हम कैसे सकेंगे इनसे, ये तो पुरुष है, धर्म में बलवान बनाता है, कमजोर नहीं बनाता, डट कर सामना करना चाहिए।
जी गुरुजी, जैसा कि आपने अभी कहा कि धर्म का सही पालन ही हमारी स्ट्रेंथ है, अन्याय से लड़ने की हमारी ताकत है। गुरुजी, आपसे बातचीत जारी रहेगी, लेकिन इस वक्त हमें लेना होगा एक छोटा सा ब्रेक। एक बार फिर आप सभी दर्शकों का ऊर्जा में स्वागत है। गुरुजी, हमारे दर्शकों के मन में कभी कभी ऐसी दुविधा भी होती है कि वो परदेश में जाकर धन कमाएं या अपने ही देश में रहें।
परदेश में जाकर धन कमाना कोई बुरी बात नहीं है, गृहस्थ हैं, ईमानदारी के साथ, परिश्रम के साथ धन कमाना चाहिए, यहाँ कमाएं, बाहर कमाएं, लेकिन एक बात के लिए सजग रहना चाहिए कि हम परदेश में जाकर के धन तो कमा रहे हैं, लेकिन वहां का वातावरण ऐसा है कि हमारा चरित्र बिगड़ जाए, हमारे बच्चे जो वहां रहेंगे उनका चरित्र बिगड़ जाए, तो बचना चाहिए। और कहीं कहीं तो दुर्भाग्य से यह भी होता है कि बड़ा भेदभाव होता है, ये किस रंग का आदमी है, ये हमारे रंग का नहीं है, इस रंग का है तो उसे घृणा करें, ये जहां भेदभाव होता है और हमारा आदर नहीं होता, अनादर होता है, मान नहीं होता, अपमान होता है, तो केवल धन के लिए हम कॉम्प्रोमाइज नहीं करेंगे। एक बात ख्याल रखनी चाहिए, जैसे संतों ने कहा, जहां जाय आदर नहीं और नयनन नहीं स्नेह, तुलसी तहां न जाइए चाहे कंचन बरसे मेह। कितना भी सोना मिलता हो, अरे जहां अपमान होता है, हमारा सम्मान नहीं होता, हमारी इज्जत नहीं होती, तो वो धन किस काम का? तो ये ख्याल रखना चाहिए। और एक बड़ी बात, चरित्र जहां जाने पर हम अपने शील सदाचार का पालन न कर सके, सारा वातावरण ऐसा है, वो वातावरण हमें खींचता है बुराई की ओर जाने के लिए, दुराचरण की ओर जाने के लिए, बिल्कुल छोड़ के चले आना चाहिए, हमारे काम की बात नहीं है। तभी कहा संत ने कि रहीम मन रहीबो वा भलो, जो लो शील समूह, जहां पर शील कायम है वहां रहना तो ठीक है, लेकिन शील ढील जब देखिए तुरंत कीजिए कूच, छोड़ो उस जगह को, अपने काम की बात नहीं है।
जी गुरुजी, गुरुजी हम ये भी जानना चाहेंगे कि ये जो मंगल उपदेश की आपने बात की वो स्टूडेंट्स पर कैसे लागू होती है?
और ज्यादा लागू होती है बेटी, वो जीवन है उनका, उस जीवन में वो तैयार हो रहे हैं, तो एक और पढ़ाई है, लिखाई है, कोई शिल्प कला है, सबसे बड़ी बात चरित्र निर्माण होना है। अगर वो ऐसे किसी वातावरण में रहें, किसी हॉस्टल में रहें कि जहां का सारा वातावरण दूषित ही दूषित है, बच्चों को नशे पत्ते की आदत दी जा रही है, बच्चों को व्यभिचार की आदत दी जा रही है, तो बचाना चाहिए बच्चों को, मिलकर के उस वातावरण को सुधारने के लिए माँ बापों को खड़ा होकर के जोर लगाना चाहिए कि ये बदलने चाहिए, नहीं तो हम नहीं रखेंगे अपने बच्चों को यहां पर। बच्चों को भी मिलकर के विरोध करना चाहिए, नहीं सुधरता है तो अपने बच्चों को निकाल देना चाहिए, किसी और हॉस्टल में रखें, किसी और स्कूल में रखें। चरित्र के साथ किसी तरह का कॉम्प्रोमाइज करना उनका जीवन बिगाड़ना है।
गुरुजी क्या हम ये कहकर ही संतोष ना कर ले कि हमारे कर्म संस्कारों का ही फल है जो हमें प्रतिकूल परिस्थिति में रहना पड़ रहा है?
अरे नहीं बेटी नहीं, ये तो कर्म सिद्धांत के प्रतिकूल बात हो गई। हमारे पुराने कर्मों की वजह से सुखद दुखद परिस्थितियां आएंगी, इसमें कोई संदेह नहीं, लेकिन कर्म सिद्धांत को मानने वाला व्यक्ति इस समय के कर्म को महत्व देगा। कैसी परिस्थिति आई पुराने कर्मों की वजह से, इस क्षण का मैं मालिक हूं, तो इस क्षण अपने अच्छे कर्म के बल पर परिस्थितियों को बदलूंगा, उनका सामना करूंगा। और ऐसे घुटने टेक दे क्या करें, हमारे भाग्य में यही लिखा था, हमारा पुराना कर्म ऐसा ही था, तो धर्म की बात नहीं हुई, कायरता की बात हुई, उसका सामना करना है, ऐसी परिस्थिति में घुटने नहीं टेकना है।
जी गुरुजी, गुरुजी आप अनुकूल निवास के बारे में और क्या कहना चाहेंगे?
अनुकूल निवास के बारे में क्या कहें बेटी, कि माने ऐसा राज्य हो जहां पर हर तरह की सुविधा हो, ध्यान करने की, रहने की, बच्चों की पढ़ाई की, स्वास्थ्य की, वो तो ठीक, लेकिन वहां का सारा वातावरण भी स्वास्थ्य के दृष्टिकोण से बहुत अच्छा हो, जहां कोई संत रहता है, अरहंत रहता है, वहां वातावरण धर्म का हो जाता है, सारी तरंगें धर्म की तरंगें होती हैं, सारी वनस्पति, सारी प्रकृति बड़ी सुहावनी हो जाती है। भगवान के जीवन काल की एक घटना, कौशल का राजा प्रसेनजीत एक जगह से दूसरी जगह गया, शाम होते होते यूं हुआ कि आज की रात यहीं बिताएंगे, देर हो गई, अब हम कौशल की राजधानी में जाने में समय लगेगा, आज रात यहीं बिताएंगे। शाम का समय था, बड़ा सुहावना समय था, तो कहा थोड़ा सा घूम लें, पैदल घूम लें, तो अपने दो चार कर्मचारियों को साथ लिया, घूमने निकला। सारी की सारी प्रकृति वहां की इतनी खूबसूरत, इतनी अच्छी, इतनी सुहावनी, तो कहते हैं कि हमने देखा है कि जहां भगवान बुद्ध रहते हैं वहां की सारी प्रकृति बड़ी सुहावनी हो जाती है। तो किसी ने कहा उनको कि भगवान बुद्ध यहीं विराज रहे हैं, कुछ दिनों से यहीं रह रहे हैं, अरे इसीलिए इतनी प्रकृति सुंदर है। तो जाता है, उनको नमस्कार करता है, उनसे धर्म की बात सुनता है, तो ये साबित करता है कि जहां पर संत रहेंगे, अरहंत रहेंगे, सारी प्रकृति अनुकूल हो जाएगी, बहुत सुहावनी हो जाएगी। इस माने में भी पति रूप देश वासोच है, अनुकूल देश में रहना चाहिए।
शुक्रिया गुरुजी, अनुकूल निवास क्या है और उसमें रहने के क्या लाभ है ये हमने आपसे जाना। उत्तम मंगल के बारे में और भी जानेंगे, लेकिन एक छोटे से ब्रेक के बाद। ब्रेक के बाद एक बार फिर आप सभी दर्शकों का ऊर्जा में स्वागत है। गुरुजी अब तक आपने हमें मंगल पथ के चार चरण समझाए, अगला चरण कौन सा है?
मंगल पथ का अगला चरण है कि हम अपने जो पुराने पुण्य के संस्कार इकट्ठे कर रखे हैं उसका लाभ लेवें। वो लाभ देंगे ही, हमने क्या संग्रह किया पुराने, वो संग्रह हमको इस जीवन में काम देना शुरू कर देंगे। तो पुराने कर्म अच्छे या बुरे जो भी हैं वो हमारे साथ हैं। पुण्य अगर हमारे साथ होगा पुराना तो हमें बहुत मदद करेगा। तो एक पुण्य तो सबसे बड़ा ये है कि हम मनुष्य हैं, अच्छा कर्म किया तो मनुष्य का जीवन मिला। इसके अतिरिक्त तो जो भी पुण्य के कार्य किए हैं वो हमारे साथ हैं और उनका हमें लाभ मिलेगा।
गुरुजी, इसके पहले भी आपने पाप और पुण्य की बातें समझाई थी, आज फिर आप हमें बताएंगे कि पुण्य क्या है और पाप क्या है?
बेटी, ये पाप और पुण्य की व्याख्या जितनी बार समझाई जाए और जितनी बार समझी जाए अच्छी ही बात है, बार बार दोहराने में कोई दोष नहीं। भाव, सीधी सी बात है कि जब जीवन हमारा सदाचरण में जा रहा है तो पुण्य ही पुण्य है, दुराचरण में जा रहा है तो पाप ही पाप है। और अगर सदाचरण में जा रहा है तो अपने आप सुख जागते हैं जीवन में, दुराचरण में जा रहा है तो अपने आप दुख जागते हैं जीवन में। सदाचरण में क्या है? चित्त हमारा जिस वक्त विकारों से मुक्त है उस वक्त हम जो काम करेंगे वो सदाचरण होगा, दुष्कर्म हो नहीं सकता। और जिस समय हमारा चित्त विकारों से भरा हुआ है तो सदाचरण हो नहीं सकता, दुराचरण ही होगा। ये बात ख्याल रखें कि सदाचरण ही पुण्य है और दुराचरण ही पाप। सदाचरण से सुख जगे और दुराचरण दुख ताप। इतना ध्यान में रहे तो हम दुराचरण से बचेंगे और सदाचरण में लगे रहेंगे। कभी कभी हम ये सोच लें, गलत सोच है ये, गलत सोच लें कि एक जीवन समाप्त हुआ तो उसके साथ जो कुछ हमने इकट्ठा किया था पहले, पाप या पुण्य, वो सारा समाप्त हो गया, जीवन ही समाप्त हो गया, नया शुरू हुआ तो क्लीन स्लेट के साथ शुरू हुआ। ऐसा नहीं होता, जीवन धारा चलती रहती है। एक से दूसरा जीवन आरंभ होता है तो वही जीवन धारा चल रही है। एक बात और समझ लेनी चाहिए कि ऐसा नहीं होता कि हमने कुछ पाप किए और फिर पुण्य कर लिया तो अकाउंट सेटल हो गया, राइट ऑफ हो गए, नहीं होता। पाप किया उसका फल, पुण्य किया उसका फल। जैसे एक नीम का पेड़ लगाया हमने, खारा है, उसके आसपास मीठे आम के पेड़ लगा दिए 10, उसका खारापन नहीं मिटने वाला, वो खारा रहेगा ही। खारे का खारा फल आएगा, मीठे पेड़ लगाए उनका मीठा फल आएगा। तो हमें ये ख्याल रखना होगा कि जैसे भी हमारे कर्म हैं, अच्छे हैं बुरे हैं, वो अब आ रहे हैं अपना फल देते हुए। अब हमें सतर्क रहना है कि जो फल आया है उसमें भी वैसा ही बीज है और वो बीज फिर वैसा ही फल देगा आगे। तो हम नया काम ऐसा नहीं करें कि उस पुराने कर्म का जो फल आया है उसको बढ़ावा देवे और उस तरह कर्म बनाने शुरू कर दें तो अंत नहीं आएगा इसका। तो फिर ये रेलगाड़ी पटरी बदलती रहेगी, चलती रहेगी, पटरी बदलती रहेगी, अंत नहीं आएगा। हमें टर्मिनस पर पहुंचना है और वो तब होगा कि जितने कर्म संस्कार हैं उनको समाप्त कर लें, कुछ भुगत करके और कुछ साधना द्वारा। साधना द्वारा भी भुगतते हैं। अब हमारी अकलमंदी इस बात में है कि आज इस क्षण जो अवस्था है हम उसमें सतर्क रहेंगे, कितने ही पाप कर्म का फल आए, कितना ही दुखद फल आए, हम नहीं व्याकुल होते, अपने समता कायम रखेंगे तो इस प्रकार उसे छुटकारा पाते 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 हम बिल्कुल मुक्त हो जाएंगे। अपने पर निर्भर करता है, खुद पर निर्भर करता है।
शुक्रिया गुरुजी। गुरुजी, हमारे इस प्रोग्राम का अगला सेक्शन दर्शकों के प्रश्नों पर आधारित है, तो दर्शकों जाइएगा मत, अभी हाजिर होते हैं आपके प्रश्नों के उत्तर लेकर। ब्रेक के बाद आप सभी दर्शकों का एक बार फिर स्वागत है। गुरुजी, पहला प्रश्न पूछ रही है नेहा ब्राह्मणे नागपुर से। वो कहती है कि यदि कोई व्यक्ति सौम्य मधुर भाषा समझता ही नहीं, चिल्लाना पड़े तो क्या करे?
देखो बेटी, चिल्लाना कटुता के साथ भी होता है, कठोरता का व्यवहार करना आवश्यक होता है। कहीं कहीं जहां मृदु बात नहीं समझता कोई तो कठोरता के साथ व्यवहार करें। भीतर अगर हमने कटुता जगा दी तो अपनी हानि कर ली, हमने अपनी हानि कर ली तो दूसरे का भला कैसे कर सकते हैं? लंगड़ा आदमी किसी दूसरे लंगड़े को कैसे सहायता करेगा? अंधा आदमी किसी दूसरे अंधे को कैसे सहायता करेगा? हम अपने आप को संभाल के रखें, कठोर शब्द इस्तेमाल करने हैं करें, लेकिन भीतर समता रहे, क्रोध नहीं हो, द्वेष नहीं हो, बल्कि करुणा हो कि यह आदमी और भाषा समझता नहीं तो क्या करें, इसलिए कठोर शब्द इस्तेमाल करते हैं।
गुरुजी, अगला प्रश्न पूछ रहे हैं दिलीप बोरा जी मुंबई से। वो कहते हैं कि अगर हमारे सामने लक्ष्य ना हो, कोई गोल ना हो, क्या हम दिशाहीन नहीं बन जाएंगे? और अगर फल की अपेक्षा ना करें तो काम में उत्साह कैसे लाएंगे?
दोनों ही भ्रांति भरे प्रश्न है बेटी। लक्ष्य नहीं होगा तो कैसे काम करेंगे? ठीक ही बात है, लक्ष्य है, पर लक्ष्य क्या है वो स्पष्ट होना चाहिए। हमारे लिए सबसे बड़ा लक्ष्य है, हम मनुष्य हैं, प्रकृति ने, कुदरत ने, निसर्ग ने, या यूं कहें किसी परमात्मा ने, किसी अल्लाह मियाँ ने हमें ये शक्ति दी है। हमारे भीतर एक ऐसी ऊर्जा है, उसको अगर हम जगाएं तो हम अपने आप को इतना सुधार सकते हैं, अपने भीतर के मैल को निकालते 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 मुक्त अवस्था पर जा सकते हैं। ये ऊर्जा किसी पशु में नहीं है, किसी पक्षी में नहीं है, किसी सरीसृप में नहीं है, किसी कीट पतंग में नहीं है, किसी प्रेत प्राणी में नहीं है। ये देन है हमें, और उसका हम उपयोग नहीं करें। हमारा लक्ष्य है इसका हम उपयोग करें, इसको जगाएं, पहले ये ऊर्जा जागे हमारे भीतर, ये प्रज्ञा जागे, और फिर इसका उपयोग करके हम अपने मनुष्य जीवन को सफल कर लें। ये लक्ष्य हमारा, और इसके लिए हम काम करेंगे, क्यों नहीं करेंगे।
गुरु जी, अगला प्रश्न पूछ रहे हैं सुनील मिश्रा जी नेपा नगर से। वो कहते हैं कि क्या विभिन्न देवी देवताओं का अस्तित्व है? यदि है तो क्या इनकी पूजा करना, उन्हें खुश करना आवश्यक है? और यदि इनका अस्तित्व नहीं है तो फिर इनके चमत्कार क्यों होते हैं?
बेटी, किसी देवी देवता का अस्तित्व है या नहीं है, कोई चमत्कार सही है या गलत है, हमें उससे क्या लेना देना। अगर कोई देवी देवता है और हम धर्म के रास्ते चल करके अपने चित्त को निर्मल कर रहे हैं, अपने कर्म को सुधार रहे हैं, तो कोई देवी देवता खुश होंगे ना, वो हमसे नाराज कैसे होंगे? कोई चमत्कार है या नहीं है क्या फर्क पड़ा उससे? हमको अपने आप को सुधारना है। कोई चमत्कार हो गया इसलिए सुधारना बंद कर देंगे, अपना जीवन सुधारना बंद कर देंगे, तो गलत रास्ते पड़ गए। हमने जो धर्म के कदम उठाए हैं उसमें जरा से भी हिचकिचाहट नहीं आएगी, रुकावट नहीं आएगी, वो चलता रहेगा, और बाकी जो है सो है, है तो है, नहीं है तो नहीं है, हमारा क्या बिगड़ा? हमको तो अपने रास्ते चलना है, इस बात का ख्याल रखें, उससे न चूक जाएं।
शुक्रिया गुरु जी, आपने इन प्रश्नों के उत्तर द्वारा हमें कितनी अच्छी और नई बातें सुनाई। आज का एपिसोड यहीं पर समाप्त होता है गुरु जी। प्रणाम।
सुखी हो बेटी, खूब सुखी हो।
प्रणाम माता जी। तो दर्शकों, हमेशा की तरह मैं तो यही उम्मीद करूंगी कि आपको हमारा ये एपिसोड बहुत ही पसंद आया होगा। आप हमें अपने प्रश्न और सुझाव जरूर लिख भेजिए। हमारा पता है ऊर्जा, जी नेटवर्क, पीओ बैग नंबर 1, अंधेरी ईस्ट, मुंबई 99, इंडिया TVC। आप हमें ईमेल भी कर सकते हैं response@znetwork.com। अगले हफ्ते इसी दिन इसी समय देखना ना भूलिए ऊर्जा। नमस्कार। नमस्कार, ऊर्जा में आप सभी दर्शकों का हार्दिक स्वागत है। पिछले हफ्ते गुरुजी ने हमें बताया कि ये कर्म संस्कारी है जिनकी वजह से हमारी जीवन धारा चलती रहती है। जीवन में रुचि रखने वालों को इन कर्म संस्कारों के बारे में गहराई से जानना जरूरी है। तो आइए इसी विषय में कुछ और जानकारी पाते हैं विपश्यना आचार्य श्री गोयनका जी से। प्रणाम गुरुजी।
सुखी हो बेटी।
प्रणाम माता जी। गुरुजी, आपने पिछली बार हमें पूर्व पुण्यों की और कर्म संस्कारों की प्रक्रिया की बात बताई। हम चाहते हैं कि आप इसी बात को उदाहरण देके स्पष्ट करें।
क्या उदाहरण दें बेटी? हर व्यक्ति अपने आप में उदाहरण है, अपने अपने पूर्व कर्मों की उपज है। हर आदमी कर्म भी स्वयं बनाता है और उसकी उपज भी स्वयं है। कर्म का जो फल आता है वो इस रूप में आया, ये मनुष्य इस तरह का जन्मा, वो मनुष्य इस तरह का जन्मा। फिर भी कॉन्क्रीट एग्जाम्पल हो, देखना चाहो तो भगवान बुद्ध का। कोई व्यक्ति जब सम्यक संबुद्ध बनने का निश्चय करता है तो उसे 10 पारमिताएं, पारमिताएं कहते हैं वो सद्गुण जो हमको भवसागर के पार पहुंचा दें, ये सद्गुण होने चाहिए और ये सद्गुण परिपूर्ण होने चाहिए। और जो सम्यक संबुद्ध बनेगा तो बहुत बड़ी मात्रा में, तो कितने जन्मों तक उसको एकत्र करना पड़ता है, संग्रह करना पड़ता है, करते करते कितने कल्पों में, कितने जन्मों में, तब जाकर के वो अपना अंतिम जन्म लेता है, उसकी पारमिताएं पूरी हो गई और तब वो सम्यक संबुद्ध बनता है। कभी कभी किसी प्रसंग में अपने किसी पूर्व जन्म की कोई बात लोगों को बताता है, जन्म तो कितने हुए गिनती नहीं, लेकिन कोई घटना घटी तो ऐसी घटना पहले भी घटी थी या इस तरह की घटना जो पहले घटी थी उसमें तुमने ऐसा किया था, उसने ऐसा किया था, ये पुरानी बात लोगों को सुनाएंगे, उसको जातक कहते हैं। लगभग 500 ऐसी जातक है जो उन्होंने अपने पूर्व जन्म की घटनाएं लोगों को सुनाई। इसका मतलब यह नहीं कि 500 ही जन्म थे उनके, असंख्य जन्म थे, लेकिन कोई कारण से कोई घटना सुनानी थी तो इस तरह की 500 घटनाएं सुनाई। एक बात उनको देखने से स्पष्ट मालूम होता है कि हर जीवन में ये जो 10 सद्गुण हैं, इनमें से कोई ना कोई सद्गुण, कोई ना कोई सद्गुण उसका संवर्धन कर रहे हैं। जैसे बहुत बड़ा घड़ा है, एक एक बूंद एक एक बूंद डाल करके उसको भरना है तो कितना समय लगा, कितना समय लगा, सम्यक संबुद्ध हुए। ऐसे ही हम देखते हैं कि उनके संपर्क में जो लोग आए, किस व्यक्ति के पास पुराने पुण्य का कितना संग्रह है, उसके अनुसार उसको आगे बढ़ने में समय ज्यादा लगा कि कम लगा। जैसे उनका प्रमुख शिष्य, एक नंबर का शिष्य, जिसको उनका दाहिना हाथ कहते थे, जिसको धर्म सेनापति कहते थे, वो सारिपुत्र, भगवान ने उसे विद्या सिखाई, उसको 15 दिन लगे, 15 दिन अभ्यास करते 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 अरहंत हुआ, मुक्त हो गया। उसके बाद का 2 नंबर का शिष्य मोगलायन, वो 2 नंबर का शिष्य है, सारिपुत्र को दाहिना हाथ कहा, उसको बाएं हाथ कहा, उसको 5 ही दिन लगे, 5 ही दिन में सीख गया। संग्रह कितना है पुराना, अनेक ऐसी घटनाएं। एक अपने बंबई के पास जहां अब नल्ला सुपारा है, वहां एक बहुत बड़ा बंदरगाह हुआ करता था, यहां का एक सन्यासी, उसने सुना अरे श्रावस्ती में कोई व्यक्ति सम्यक संबुद्ध बना है, तो उसके मन में हुआ उनके पास जाकर के मैं मुक्ति की विद्या सीखूं। तो गया वहां पर, भगवान उस समय बिहार में थे नहीं, भिक्षाटन के लिए गए हैं, तो शहर में गया। वहां शहर में किसी सड़क पर भगवान जा रहे हैं, उनका पांव पकड़ के बैठ गया, मैं इतनी दूर से आया हूं, मुझको सिखाइए मुक्ति का रास्ता सिखाइए। अरे तुम बिहार में आओ वहां सिखाएंगे, ये सड़क पर कैसे सिखाएं? नहीं महाराज, अभी सिखाना होगा, अभी सिखाना होगा, मैं बिहार में आऊं आप बिहार में आए तब तक कौन जाने मैं मरी जाऊं, कौन जाने आपसे फिर मुलाकात हो या ना हो, अभी सिखाइए। भगवान ने भी देखा है तो बड़ी जल्दी मरने वाला है, तो वहीं उसे 2 शब्द सिखाए, केवल 2 शब्द। उसका ध्यान करते करते तो अरहंत हो गया, चंद मिनटों में अरहंत हो गया। क्यों? कि उसके पास पुराना संग्रह इतना ज्यादा था, यही विद्या उसने अनेक जन्मों में सीखी थी, एक जगह जाके अटक गया। अब मुक्ति में थोड़ी सी बात अटक गई, वो थोड़ी सी बात मिल गई, तुरंत हो गया। तो ये अपने पुराने संग्रह की वजह से शिविरों में लोग आते हैं, एक जैसे मेहनत करते हैं, सब लोग एक जैसे जो सिखाया जाए उतनी मेहनत करेंगे, बड़ी परिश्रम करेंगे। एक आदमी छलांगे लगा के आगे बढ़ गया और उतनी मेहनत करने वाला दूसरा आदमी उतना आगे नहीं बढ़ सका, यही कारण है और कुछ नहीं बेटी।
शुक्रिया गुरुजी। गुरुजी आपसे बातचीत जारी रहेगी लेकिन एक छोटे से ब्रेक के बाद। ब्रेक के बाद आप सभी दर्शकों का ऊर्जा में एक बार फिर स्वागत है। गुरुजी वैसे तो आपने हमें ये बात पहले भी समझाई है लेकिन हम एक बार फिर आपसे जानना चाहेंगे कि हमारे जीवन में जो कुछ हो रहा है क्या वो हमारे पूर्व कर्मों का ही परिणाम है?
पूर्व कर्मों का परिणाम है, लेकिन इतना मान के रह जाएं, क्या करें, हमारा पूर्व कर्म ऐसा था इसलिए ऐसा ही होगा, हम क्या करें, तो कर्म सिद्धांत को समझे नहीं। हमारे पूर्व कर्म हमारे वर्तमान जीवन को इस धारा में बहा रहे हैं, सुखद धारा में बहा रहे हैं कि दुखद धारा में बहा रहे हैं, उसका काम है पुराने कर्मों का। लेकिन वर्तमान कर्म बड़ा बलवान होता है, अगर समझदारी के साथ अपने वर्तमान कर्म का प्रयोग करें तो दुखद से दुखद धारा को बदल देंगे, सुखद धारा है उसको और सुखद बना लेंगे। तो ये जो अपनी जो मलकियत है, हम मालिक हैं, अपने हम मालिक हैं, तो हम मालिक हो करके अपना भला कैसे करें, अपने में बुराई हो उसको कैसे निकालें, अपने जो अच्छाई हो उसको कैसे बढ़ाएं, ये वर्तमान कर्म बहुत महत्व का। पर वर्तमान कर्म कोई करे ही नहीं, अपना पुराना स्वभाव है वैसा ही चलने दे चलने, वर्तमान कर्म क्या करेगा, वर्तमान कर्म करे ही नहीं, करना चाहिए ना। जैसे एक ही मुहूर्त में एक ही डाल पर फूल भी लगा, कांटा भी लगा, कांटा अपना स्वभाव लिए चल रहा है, फूल अपना स्वभाव लिए चल रहा है, वो अगर बदले ही नहीं तो क्या होगा। तो जो व्यक्ति कांटे के स्वभाव वाला है वो अपने को कांटे का स्वभाव ही बनाए रखे तो इसमें कर्म सिद्धांत क्या करेगा, तुम अपना कर्म सुधारते नहीं हो। लेकिन सुधारे तो कांटे के स्वभाव वाला व्यक्ति बदल सकता है। धर्म यही सिखाता है कि पीछे जो हुआ सो हुआ, लेकिन वर्तमान का मैं मालिक हूँ, इस क्षण का मैं मालिक हूँ, अपने भविष्य को बदल दूंगा, अच्छाई की ओर ले जाऊंगा।
गुरुजी, अब हम आपसे अगले मंगल के बारे में जानना चाहेंगे।
हाँ बेटी, अब अगला मंगल बड़ा महत्वपूर्ण है, हर मंगल महत्वपूर्ण है। अगला मंगल है, हमको अच्छा जीवन जीना है तो अपनी ओर झांक कर देखें, अपने बारे में जाने। हमें अपने चित्त को एकाग्र करना है तो कोई आलंबन चाहिए, हम अपना आलंबन बनाएंगे, उसे देखें। तो उसे अत सम्मा पणिधि चय कहा, पुरानी भाषा है, माने अपने आप की ओर ध्यान दो, अपने आप की जो सच्चाई है उसमें स्थापित हो, इसको आत्म प्रणिधान कहा।
गुरुजी, इसी बात को थोड़ा विस्तार से समझाएंगे।
बेटी, जब भी कोई मन को एकाग्र करना चाहता है तो उसे कोई ना कोई आलंबन चाहिए, कोई सहारा चाहिए, उसी का ध्यान करते 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 चित्त एकाग्र होगा। हम जब से जन्मे हैं, आंख खुली है तो बाहर ही देखा, जब देखा बाहर देखा, बाहर ही देखा तो बहिर्मुखी, बहिर्मुखी रहे, अपने भीतर क्या हो रहा है इसको कभी देखा नहीं। आंख बंद करके बैठे भी तो अपने भीतर अपने बारे में जो सच्चाई है उसका ध्यान नहीं किया, उस ओर ध्यान नहीं दिया। हमारी ये दार्शनिक मान्यता उसका ध्यान करो, हमारी ये दार्शनिक मान्यता उसका ध्यान करो, सबने अपनी अपनी काल्पनिक मान्यताएं बना रखी है उसका ध्यान करो, तो सच्चाई का ध्यान नहीं कर रहे हैं, अपनी अपनी कल्पना का ध्यान कर रहे हैं, अपनी अपनी मान्यता का ध्यान कर रहे हैं। तो हमें चाहिए कि अपने बारे में ध्यान करें, मेरे अंदर क्या हो रहा है, मेरे भीतर क्या है। अपने भीतर जो बुराई है उसको जानेगा ही नहीं तो निकालेगा कैसे। तो अपने भीतर की बुराई को जानने के लिए हम अपना ध्यान करें, अपने बारे में क्या हो रहा है उसको जाने, अपने अंदर अच्छाई है उसको जानने के लिए अपना ध्यान करें, अपने भीतर क्या हो रहा है। नहीं तो बाहर देखता है उसमें ये खोट है, इस आदमी में ये खोट है, इसमें ये खोट है, इसी में सारा जीवन बिता देता है। एक छलनी सुई को देखती है, अरे छेद है इसमें, इसमें छेद, अरे उसके एक छेद को देखती है, तुझमें सैकड़ों छेद है, उसको नहीं देखती है। अपने को देखना आए तो मालूम हो कि मेरे अंदर क्या बुराई है। बुरा बुरा सबको कहे, बुरा न देखा कोई, जो दिल खोजे आपना, अरे मुझसे बुरा न कोई। अपनी बुराई सामने आए तो आदमी अपने को बदलेगा नहीं, कैसे बदलेगा। इसलिए ये विद्या कि अपनी ओर झांको, अपनी बात को जाने बिना हम कभी भी अपने को सुधार नहीं कर सकते। अंदर क्या हुआ, बाहर घटना घटी, अंदर क्या हुआ तो संतों ने देखा, उनकी वाणी में सारी विपश्यना भरी पड़ी है। अपने जाने आप गति और न जाने कोई, अपनी गति भीतर क्या गति बना रहा हूं मैं ही जान सकता हूं, दूसरा क्या जानेगा, वो तो ऊपर ऊपर ही गति जानेगा। भीतर क्या गति बना रहा हूं अपनी गति मिति जानहु आपे, अपनी गति भी और अपनी मति भी। घटना घटी, हमने क्या मति बनाई, हमने क्या मति बनाई, दुर्मति बनाई कि सुमति बनाई, हमने क्या नति बनाई, किस ओर झुका हुआ, अवनति की ओर झुका हुआ कि उन्नति की ओर झुका हुआ, हमने कैसी गति बनाई, सदगति बनाई कि दुर्गति बनाई, ये खुद देखना होता है। इसलिए ये विद्या अपनी ओर देखो, अपने आप को जानो, ये आत्मसम्मापने दी है।
शुक्रिया गुरुजी, अभी अभी आपने हमें बताया कि कैसे हमें अपने अंदर झांकना चाहिए, इसी बात को आगे जारी रखेंगे लेकिन एक छोटे से ब्रेक के बाद। एक बार फिर आप सभी दर्शकों का ऊर्जा में स्वागत है। गुरुजी, जैसे कि आपने कहा कि हमें अपने भीतर झांकना चाहिए, तो ये अपने आप को देखने का काम जब हम शुरू करते हैं उसके साथ कुछ और भी परिश्रम करना पड़ता है?
यही अपने आप में बहुत बड़ा परिश्रम है बेटी। हम अपने बारे में सच्चाई देखने लगे, देखते हैं कि मेरे में ये बुराई है। जब ये पता लग जाता है कि मेरे में ये बुराई है तो ये बुराई कहीं बढ़ न जाए, इसको घटाना है। और देखे कि ये बुराई तो नहीं है तो मन के सारे दरवाजे बंद, ये दरवाजा, ये बुराई आ ना जाए। ऐसे देखता है कि ये अच्छाई है, अरे ये अच्छाई है, ये कहीं निकल ना जाए, इसे रखे संभाल करके इसको बढ़ाए। इसी प्रकार देखता है मेरे अंदर ये सद्गुण है तो उससे कोई गर्व नहीं जगाता, ये सद्गुण है, इनको कायम रखना है, इनको बढ़ाना है। और देखता है ये सद्गुण तो है नहीं, तो है नहीं तो मन के सारे दरवाजे खुलता है, आए भाई ये सद्गुण आने चाहिए। ये चार तरह की कसरत है, ये चार तरह की कसरत अपने को देख करके ही। कब देखेगा, अपने भीतर सारा ध्यान लगाएगा। भगवान ने इसीलिए इस विद्या को सीखने के लिए लोगों को कायस्थ बनाया। क्या कायस्थ होता है, जो काया में स्थित हो गया, काया में क्या हो रहा है उस सब को जान रहा है, तो काया में स्थित होकर के उसको जानेगा, इस माने में कायस्थ हो गया। अपने भीतर की सच्चाई को जानने के लिए निच्चंग काय गता सती, नित्य क्या हो रहा है भीतर, क्या हो रहा है भीतर, इसके लिए सजग रहेगा, ऐसा व्यक्ति कायस्थ। और ये अत्त सम्मापनिधि, ये विद्या कायस्थ बनने की विद्या।
गुरुजी, ये जो काया में स्थित रहने की बात आपने बताई वो भारत के कई संतों में प्रचलित थी, उनके कुछ उदाहरण देंगे?
बहुत प्रचलित थी बेटी, जैसे हमारे संत कबीर ने कहा, तीन हाथ एक अड़धाई, ऐसा अंबर चिन्हो मेरे भाई, देखो मेरे भाई। तो ये तीन हाथ और ये आधा हाथ, साढ़े तीन हाथ की काया के भीतर जो अंबर है, अरे उसको जानो, उसको पहचानो। बाहर के आकाश को क्या देखते हो, भीतर का आकाश देखो। ऐसे हमारे संत दादू, और उस दादू पंथ के एक बहुत प्रसिद्ध संत गरीबदास कहते हैं, तन खोजे तब पाए रे, तन खोजे, शरीर में खोज करेगा तब पाएगा, उल्टी चाल चले जब प्राणी तो सहजे घर आए रे। उल्टी चाल चले, ये बाहर की चाल तो चलते ही थे जब से जन्मे, बाहर मुखी बहिर्मुखी, अब उल्टी चाल, अंतर्मुखी अंतर्मुखी, भीतर की ओर जाने, तब जानेगा कि सच्चाई क्या है और मेरा अंतिम लक्ष्य क्या है, कहां पहुंचना है। तो अपने निवास स्थान पर, यानी परम शांति के स्थान पर पहुंच जाएगा अपने आप को जानने से। तो अपने आप को कैसे जाने, आपा जान उलटले आप, अपना जानने के लिए उल्टो अपने आप को, भीतर की ओर क्या है उसको जानो। आपो जाने आपो आप, रोग न व्यापे तीनों ताप, जो अपने आप को जानने लगा सारे रोग खत्म हो गए, भव रोग खत्म हो गए, सारे संताप खत्म हो गए। ये अपने को जानने की विद्या जब आदमी करता है तब इन बोल को समझता है, संतों की वाणी को समझता है। एक हुए अपने यहां संत मलुकदास जी, कहते हैं, आपा खोज रे जिह माई, तेरे जी के अंदर अपनापा खोल, खोज क्या है, आपा खोजे तो क्या होगा, आपा खोजे त्रिभुवन सूझे, बाहर त्रिभुवन को देखने में कुछ नहीं मिलेगा, भीतर त्रिभुवन है, भीतर त्रिभुवन दिखने लगेगा, अंधकार मिट जाए, अज्ञान का अंधकार समाप्त हो जाएगा, भीतर का प्रकाश, भीतर की सच्चाई मालूम होने लगी। सभी संतों ने जिन्होंने अंतर्मुखी होकर सच्चाई को देखा इसी तरह की बात करते हैं। भगवान ने बुद्ध ने कहा, हृदय के पास हृदय वस्तु है, माने हृदय का केंद्र है, वहां तक जब नहीं पहुंचेगा सच्चाई कैसे जानेगा। तो वो बाहर बाहर के पुस्तकों से नहीं प्राप्त होता, अपने बंदर देखना होता है। जो पहुंचे ते कहे साके, सब उपजे बिन से माया। ये सारी भीतर जो माया है उत्पन्न होता है नष्ट होता है, उत्पन्न होता है नष्ट होता है। इसको देखता है तो किसको मैं कहूं, अरे किसको मेरा कहूं, ये तो उत्पन्न हुआ नष्ट हुआ, उत्पन्न हुआ नष्ट हुआ। ये होश जागता है, ये होश जागता है तो धर्म के रास्ते आगे बढ़ता है। तो ये सारे संतों की जो वाणी है अनुभव की वाणी है, किताबों की वाणी नहीं है। ये विद्या विपश्यना विद्या भारत में लुप्त हो गई, लेकिन अपने किसी पूर्व कर्म की वजह से किसी के संत में जाग गई, उन्होंने अनुभव किया, उनके बोल में ये वाणी आ गई।
शुक्रिया गुरुजी, आपने इन संतों के उदाहरण देके हमें कितनी अच्छी अच्छी बातें सुनाई। आपकी ये बातें हैं जो हमें अपने अनुभव को समझने के लिए प्रेरित करती हैं। गुरुजी, हमारे शो का अगला हिस्सा दर्शकों के प्रश्नों पर आधारित है, तो दर्शकों जाइएगा मत, लौटते हैं तुरंत। स्वागत है आप सभी का आपके अपने शो ऊर्जा में। गुरुजी, पहला प्रश्न पूछ रहे हैं अजय यादव जी नागपुर से। वे वासना के विकार से परेशान हैं एवं वासना के चिंतन में डूबे रहते हैं, आपकी सलाह क्या है?
बेटी, अपने देश के महान वैज्ञानिक ने केवल वासना ही नहीं सब तरह के विकारों से मुक्ति पाने का रास्ता ढूंढ निकाला, लेकिन इसका अभ्यास तो जब ये भाई कर पाएगा तब कर पाएगा। इस बीच कम से कम ये तो ख्याल रखे कि जो वासना मुझे तंग कर रही है उसको बढ़ावा तो न दो। तो वासना को बढ़ाने वाले जिस तरह के दृश्य हैं, जिस तरह का कोई श्रवण सुनने की बात है, जिस तरह कोई पुस्तकें हैं, इनसे अपने आप को दूर रखे, ऐसे व्यक्तियों से दूर रखे, ऐसी संगत से दूर रखे, तो कम से कम बढ़ावा तो नहीं हो। फिर उसके बाद कोई विद्या सीख लेगा तो छुटकारा पा लेगा इससे।
जी गुरुजी, उम्मीद करती हूँ कि अजय जी ने आपकी सलाह जरूर सुन ली होगी। गुरुजी, अगला प्रश्न पूछ रही है श्रीमती रॉय कलकत्ता से। वो पूछती है कि उनका सारा परिवार एवं वे स्वयं मांसाहारी है, क्या मांस या मछली खाना पाप है?
मांस और मछली खाने को हम पाप नहीं कहते, लेकिन किसी कसाई को, किसी मछुआरे को पाप करने के लिए हम प्रोत्साहन दे रहे हैं तो बचना चाहिए। और जब कोई आदमी साधना में आकर के आगे बढ़ता है तो अपने आप वो चाहता नहीं, खा नहीं सकता। तो कितने ऐसे उदाहरण हैं कि विपश्यना करते 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 मांसाहार छूट गया, मत्स्यहार छूट गया, निरामिष भोजी हो गए। ये बाहर निकलने में ही कल्याण है, इस आदत में अपनी हानि हानि है, कोई अच्छा काम नहीं है।
गुरुजी, हमारा अगला प्रश्न हमें ईमेल से आया है, नाइजीरिया से। पूछ रहे हैं परेश खापाड़े। वो कहते हैं कि उनके पीछे शनि का प्रकोप है, उससे कैसे बचे?
शनि का प्रकोप है? शनि से कोई दुश्मनी है? शनि बेचारा क्या करेगा, शनि देवता कहते हैं ना, देवता है तो उसमें दिव्य गुण होने चाहिए, वो क्यों हम पर प्रकोप करेगा? अरे प्रकोप तुम्हारे कर्मों का है भाई, कोई पुराने कर्म ऐसे किए उनका फल आ रहा है और दोष देते हो बेचारे इस तारे को, उस तारे को, इस शरीर को, उसको। भूल जाओ ये सब बातें, अपने दोष को निकालो, मैंने कुछ दोष किया उसका ये फल आया है और अब मैं अपने उस दोष को दूर करके शुभ कर्म करते हुए, सत्कर्म करते हुए अपनी धारा को सच्चाई की ओर ले जाऊंगा, शांति की ओर ले जाऊंगा, सुख की ओर ले जाऊंगा। भूलो शनि देवता को, बेचारे को मत दोष दो किसी तरह।
शुक्रिया गुरुजी, आपने हमारे सारे प्रश्नों के इतने अच्छे उत्तर दिए, इतनी अच्छी अच्छी बातें हमें समझाई। आज का एपिसोड यहीं पर समाप्त होता है गुरुजी। प्रणाम गुरुजी।
सुखी हो बेटी।
प्रणाम माता जी। तो दर्शकों, ये था हमारा आज का एपिसोड। आप हमें अपने प्रश्न जरूर लिख भेजिए। हमारा पता है ऊर्जा, जी नेटवर्क, पीओ बैग नंबर 1, अंधेरी ईस्ट, मुंबई 99, इंडिया टीवीसी। आप हमें ईमेल भी कर सकते हैं response@znetwork.com। अगले हफ्ते इसी दिन इसी समय जरूर देखिए ऊर्जा। नमस्कार।